लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार वित्त प्रभारी सरकारों के साथ मिलकर वित्तीय क्षेत्र को उचित ढंग से विनियमित कर नागरिकों को इसके खतरों से बचाए रखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 30 मई को पौत्र त्रित्व में ईश्वर के महापर्व के दिन संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेली सोरेल्ले बोंजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
इन क्वेस्टा फेस्टा nella quale celebriamo Dio, il mistero di un unico Dio.
यह पर्व जिसमें हम ईश्वर को मनाते हैं, एकमात्र ईश्वर के रहस्य को। ये ईश्वर हैं पिता और पुत्र और पौत्र आत्मा, तीन जन। ईश्वर एक है, किंतु पिता एक ईश्वर हैं, पुत्र एक ईश्वर हैं और पौत्र आत्मा एक ईश्वर हैं, किंतु वे तीन ईश्वर नहीं हैं, बल्कि एक ईश्वर हैं और उनमें तीन जन। यह एक रहस्य है जिसको यीशु ख्रिस्त ने पौत्र त्रित्व के रूप में प्रकट किया है। आज हम इसे मनाते हैं क्योंकि वे जन ईश्वर के विशेषण नहीं हैं, वे व्यक्ति हैं, वास्तविक, अलग अलग, भिन्न, किंतु उस तरह नहीं जैसा कि एक दर्शन शास्त्र ने कहा था। वे ईश्वर के अवतार हैं। संत पापा ने कहा, जी नहीं, वे व्यक्ति हैं, वे पिता हैं, जिनसे मैं हे हमारे पिता कहकर प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने मुक्ति और न्याय प्रदान की है। वे पौत्र आत्मा हैं जो हम में एवं कलीसिया में निवास करते हैं। वे हमारे हृदय में बोलते हैं, क्योंकि हम उस रहस्य को संत योहन की अभिव्यक्ति में पाते हैं जो पूरी प्रकाशना का सार है। ईश्वर प्रेम है, पिता प्रेम है, पुत्र प्रेम है, पौत्र आत्मा प्रेम है, और वे चूंकि प्रेम है, ईश्वर यद्यपि एक होते हुए भी वे अकेले नहीं हैं, किंतु पिता पुत्र और पौत्र आत्मा एक दूसरे से संयुक्त हैं, क्योंकि प्रेम वास्तव में एक आत्मदान है और अपने असल एवं असीम सच्चाई में स्वयं पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया, जिसमें उन्होंने अपने आप को हमें दिया। दूसरी ओर पुत्र ने भी पिता के लिए अपने आप को सौंप दिया और उनके बीच प्रेम है, पौत्र आत्मा उनकी एकता का संबंध है। संत पापा ने कहा,
Non è facile da capire।
इससे समझना आसान नहीं है, किंतु इस रहस्य को जिया जा सकता है। हम सभी इस रहस्य को जी सकते हैं। इस त्रित्व में ईश्वर का रहस्य स्वयं यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है, जिन्होंने ईश्वर के चेहरे को एक करुणावान पिता के रूप में दिखलाया, अपने आप को एक सच्चे मनुष्य के रूप में, ईश्वर के पुत्र एवं पिता के शब्द के रूप में प्रकट किया, एक मुक्तिदाता के रूप में, जिन्होंने हमें अपना जीवन अर्पित कर दिया, और पौत्र आत्मा के बारे बतलाया जो पिता और पुत्र से प्रसृत है, सच्चाई की आत्मा, सांत्वना दाता, अर्थात हमारे सांत्वना दाता एवं सहायक, जिन पर हमने पिछले रविवार को चर्चा की थी, और पुनरुत्थान के बाद जब वे शिष्यों को दिखाई दिए, उन्होंने उन्हें सभी लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने, पिता और पुत्र और पौत्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने भेजा। आज का समारोह इस प्रकार हमें प्रेम और प्रकाश के इस महान रहस्य पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम आते और जिस ओर हमारी इस धरती की यात्रा आगे बढ़ती है। सुसमाचार के संदेश एवं हर प्रकार के ख्रिस्त मिशन में इस एकता को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता, जिसको यीशु ने कहा है, हमारे बीच पिता पुत्र और पौत्रात्मा की एकता का अनुसरण करते हुए इस एकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुसमाचार की सुंदरता मांग करती है कि उसे जिया जाए, एकता और हमारे बीच इसका साक्ष्य दिया जाए जो कि एक दूसरे से भिन्न है। संत पापा ने कहा, और मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि यह एकता ख्रिस्तों के लिए आवश्यक है। यह कोई मनोभाव नहीं है, कहने का तरीका भी नहीं है। यह आवश्यक है क्योंकि एकता प्रेम से उत्पन्न होती है, ईश्वर की करुणा से, यीशु ख्रिस्त द्वारा न्याय संगत ठहराए जाने से और हमारे हृदय में पौत्र आत्मा की उपस्थिति से। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना की कि धन्य कुमारी मरियम, जिसने अपनी सरलता और दीनता में त्रितमय ईश्वर की सुंदरता को प्रतिबिंबित किया, क्योंकि उन्होंने यीशु का अपने जीवन में पूर्णतया स्वागत किया। वे हमारे विश्वास को पोषित करें, हमें ईश्वर की पूजा करने वाले और भाई बहनों के सेवक बनाएं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों का अभिवादन किया तथा विभिन्न घटनाओं की याद की। उन्होंने नए धन्यों की याद करते हुए कहा,
Ieri ad Astorga in Spagna sono state beatificate Maria Pilar Gullón Iturriaga.
कल स्पेन के अस्तोरगा में मरिया पिलार गुल्लोन यूरियागा, ओस्ताविया इग्लेसियस ब्लांको और ओल्गा पेरेज मोंतेसेरे नूनेज की धन्य घोषणा हुई। ये तीन सासी लोग धर्मी महिलाओं ने भले समारी के उदाहरण पर चलकर युद्ध से घायल लोगों की चिकित्सा हेतु खतरे की घड़ी में उन्हें छोड़े बिना अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने जोखिम उठाया और विश्वास के लिए घृणा के कारण उन्हें मार दिया गया। हम उनके सुसमाचारी साक्ष्य के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। तब संत पापा ने ताली बजाकर तीनों नए धन्यों को सम्मानित किया। उसके बाद सूचना देते हुए संत पापा ने कहा,
Primo luglio mi incontrerò in Vaticano con i principali responsabili della comunità cristiana presente in Libano.
1 जुलाई को मैं वेटिकन में लेबनान के ख्रिस्ते समुदाय के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करूंगा, जो देश में चिंताजनक स्थिति पर विचार करने के लिए एकत्रित होंगे और एक साथ शांति एवं स्थिरता के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं इस परिस्थिति को ईश्वर की माता की मध्यस्थता को समर्पित करता हूँ, जिनकी भक्ति हरिसा तीर्थ स्थल पर की जाती है, और अभी से ही इस एकता प्रार्थना की तैयारी में साथ देने उस प्यारे देश के शांति में भविष्य हेतु याचना करने का आह्वान करता हूँ। तत्पश्चात संत पापा ने विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस की याद की, जिसको 30 मई को मनाया जाता है। उन्होंने कहा,
Oggi si celebra la giornata mondiale della sclerosi multipla.
आज विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस है और इटली में राष्ट्रीय राहत दिवस मनाया जाता है। मैं इन प्रयासों के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम याद करें कि सामिप्य एक मूल्यवान मरहम है जो बीमार से पीड़ित लोगों को समर्थन और सांत्वना देता है। संत पापा ने बाइबल पाठ करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, आज सुबह मैंने विश्वासियों के एक छोटे दल का स्वागत किया, जिन्होंने अपनी बोली में अनुवाद किए गए बाइबल मुझे भेंट की। एक व्यक्ति ने 8 सालों में इसे पूरा किया है। इसमें 8 संस्करण हैं, सभी उपभाषा में। संत पापा ने कहा, लेखक जो उपस्थित था मुझे बतलाया कि उसने पढ़ा, प्रार्थना किया और अनुवाद किया। मैं इस कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ और फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ें, ईश्वचन का पाठ करें और उसमें अपने जीवन की शक्ति प्राप्त करें। मैं पुनः दोहराता हूँ कि अपने साथ नया व्यवस्थान का एक पॉकेट सुसमाचार अपने पर्स में, अपने पॉकेट में हमेशा रखें, ताकि दिन के किसी पहर भी उसका पाठ कर सकेंगे। इस प्रकार हम पौत्र बाइबल में यीशु को पाएंगे। आइए हम इस व्यक्ति के उदाहरण से सीखें, जिसने 8 वर्षों तक काम किया। उसके बाद संत पापा ने रोम, इटली एवं अन्य देशों के सभी विश्वासियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, खासकर पौत्र रोमी पहले गवाह पल्ली के दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले बच्चे। मैं पोलैंड के तीर्थयात्रियों का भी अभिवादन करता हूँ और पियेक्री स्लास के तीर्थस्थल पर तीर्थयात्रा के प्रतिभागियों का अभिवादन करता हूँ। संत पापा ने निष्कलंगर भागमन के बच्चों का भी अभिवादन किया और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 31 मई को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में इतालवी बास्केटबॉल महासंघ के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। संत पापा ने उनका तहे दिल से स्वागत कर संघ के अध्यक्ष जोवानी पेत्रुची को उनके स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, मैं खुशी के साथ आपका स्वागत करता हूं और इतालवी बास्केटबॉल फेडरेशन के जन्म की 100वीं वर्षगांठ का जश्न आपके साथ साझा करता हूं। आपके इतिहास की स्मृति में सन 1955 में संत पेत्रुस प्रांगण में संत पापा पियूस 12वें के सामने खेले गए एक खेल की स्मृति आज भी जीवित है और बाद के वर्षों में कलीसिया और खेल की दुनिया के बीच संबंध हमेशा इस जागरूकता में विकसित हुए हैं कि दोनों अलग अलग तरीकों से व्यक्ति के समग्र विकास की सेवा में हैं और हमारे समाज के लिए एक बहुमूल्य योगदान देते हैं। संत पापा ने टीम की भावना पर जोर देते हुए कहा, सबसे पहले टीम बनाना है। कुछ ऐसे खेल हैं जिन्हें व्यक्तिगत कहा जाता है, हालांकि खेल हमेशा लोगों को एक दूसरे के संपर्क में लाने में मदद करता है। विभिन्न लोगों के बीच भी संबंध बनाने के लिए अक्सर अज्ञात जो अलग अलग परिवेश से आने के बावजूद एक साथ आते हैं और एक सामान्य लक्ष्य के लिए खेलते हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एकजुट होना और एक लक्ष्य होना। इस अर्थ में खेल हमारे समाजों में व्यक्तिवाद के लिए एक दवा है जो अक्सर एक अलग और उदास अहंकार उत्पन्न करता है, जिससे हम एक टीम के रूप में काम करने और किसी अच्छे आदर्श के लिए जुनून पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार अपनी खेल प्रतिबद्धता के माध्यम से आप बंधुत्व के मूल्य को याद करते हैं, जो कि सुसमाचार के केंद्र में भी है। संत पापा ने खिलाड़ियों के अनुशासनमय जीवन को इंगित करते हुए कहा, दूसरा पहलू खिलाड़ी का मनोभाव अनुशासन है। बहुत से युवा और वयस्क जो इस खेल के प्रति उत्साही हैं और खेल के दौरान आपको उत्साहित करते हैं, वे शायद यह कल्पना नहीं कर सकते कि किसी प्रतियोगिता के पीछे इतना काम और कितना प्रशिक्षण है और इसके लिए लगातार अनुशासन की आवश्यकता होती है, न केवल शारीरिक बल्कि आंतरिक भी। यह अनुशासन एक प्रशिक्षण और स्कूल है, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए। यह आध्यात्मिक जीवन में भी मदद करता है, जिसे केवल भावनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता और न ही इसे वैकल्पिक चरणों में जिया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन को भी एक आंतरिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो निष्ठा, निरंतरता, प्रार्थना में दैनिक प्रतिबद्धता से बनी है। संत पापा ने कहा, बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जो आकाश की ओर बढ़ता है, क्योंकि जैसा कि एक प्रसिद्ध पूर्व खिलाड़ी ने कहा है, यह एक ऐसा खेल है जो ऊपर की ओर बास्केट की ओर देखता है और इसे उन सभी के लिए एक वास्तविक चुनौती है जो हमेशा जमीन को देखते हैं। संत पापा ने उन्हें बच्चों और युवाओं को खेल के प्रति बढ़ावा देने हेतु प्रेरित किया। और संत पापा फ्रांसिस ने पोंडिचेरी और कुडलोर धर्म प्रांत के फादर अरुल सेलम रायप्पन को सालेम के धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। फादर अरुल सेल्वम रायप्पन का जन्म 18 नवंबर 1960 को पांडिचेरी कुडलोर महाधर्म प्रांत के पंडरुती के निकट साठीपट्टू में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा टिंडीवनम और कुडलोर में हुई। उन्होंने अरुलानंदर कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। उन्होंने सेंट पीटर्स पोंटिफिकल इंस्टीट्यूट बैंगलोर में बीटीएच अध्ययन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 20 मई 1986 को इनका पुरोहिताभिषेक हुआ। इन्होंने अपने महाधर्म प्रांत के कुछ पल्लियों में 4 साल तक अपनी सेवा दी। वे जून 1990 को सेंट पीटर्स पोंटिफिकल सेमिनरी के स्टाफ में शामिल हुए। बाद में 1994 में पोंटिफिकल उर्बान यूनिवर्सिटी रोम में सुम्मा कुम लौदे के साथ कैनन लो में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 2000 से 2006 तक सेंट पीटर पोंटिफिकल सेमिनरी के वाइस रेक्टर और 2010 के बाद से सेंट पीटर्स पोंटिफिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। वे भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के कानून आयोग के कार्यकारी सचिव हैं। वे पोंडिचेरी महाधर्म प्रांतीय न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने के अलावा कैनिन लो सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने रंजो दोवोय पहल की 10वीं वर्षगांठ के लिए एक वीडियो संदेश भेजा जिसे स्पेन के येसु समाजी मना रहे हैं। रंजो दोवोय स्पेन के येसु समाजियों की एक परियोजना है जिसे लोयला संचार ग्रुप द्वारा समन्वित किया जाता है। या ख्रिस्तीय विश्वासियों को अपनी प्रार्थनाओं में प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक दिन धार्मिक ग्रंथों से प्रेरित प्रार्थनाओं के साथ ऑडियो फाइलें प्रदान करता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, आप जो करते हैं उसके लिए धन्यवाद। बीज बोते रहें, परियोजना में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, जो बहुतों के लिए फायदेमंद है। रेजो दोवोय जीवन का एक सच्चा कार्यक्रम है। अपने लिए प्रार्थना का अनुरोध करने के साथ संत पापा फ्रांसिस ने आशीर्वाद के साथ वीडियो संदेश समाप्त किया। उधर तलोजा सेंट्रल जेल के अधिकारियों को, जहां फादर स्टेन स्वामी को रखा गया है, बीमार बुजुर्ग पुरोहित को इलाज के लिए मुंबई के होली फैमिली कैथोलिक अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बीमार भारतीय जेसुइट पुरोहित और मानव कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल से 15 दिनों के लिए चर्च द्वारा संचालित कलिसिया द्वारा संचालित होली फैमिली अस्पताल में इलाज के लिए ले जाएं। उस दिन बाद में फादर स्टेन को बांद्रा के कैथोलिक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की अवकाश पीठ ने 28 मई को यह आदेश तब दिया जब उनके वकील मिहिर देसाई ने 84 वर्षीय पुरोहित के स्वास्थ्य में और गिरावट का हवाला देते हुए पिछले दिन एक विशेष याचिका दायर की, जिन्हें जेल के बाहर विशेष उपचार की तत्काल जरूरत थी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।